Benyar. Buku Benyar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
دعوت پر جو تم بلائے گئے ہو اس میں
ہیں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے. تسبیح یعنی اللہ کو منزہ جاننا، یعنی اللہ کو بے عیب سمجھنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں. اسی لیے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں یہ تسبیح ہے. یہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ پورے وجود سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب و نقص ہے، منزہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب اللہ کی ذات نہیں ہے، پورا وجود اس بات کا اقرار کرے. اور آپ 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ہر سانس آپ کی تسبیح. 24 گھنٹے میں جتنی سانسیں آپ لے رہے ہیں ہر سانس آپ کی تسبیح ہے. ہر سانس لے رہے جو ہے ایک سانس لے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحمید تحمید الحمدللہ، ان کے نام ہیں. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، تحمید کا مطلب الحمدللہ، تحمید حمد سے حمد، تحمید کا مطلب الحمدللہ. اس طرح سے عربی میں ان اذکار کے نام ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں، اس مہمانی اللہ کی ضیافت کے مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا حکم رکھتی ہیں. ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے. سونا بھی عبادت ہے. آیت اللہ احمدی میاں جی یہاں پر فرما رہے تھے، ایک وقت وہ تھا جب ہم میدان جنگ میں، ایران عراق جنگ جب ہو رہی تھی 8 سال، دفاع مقدس جس کو کہتے ہیں، دفاع مقدس کے وقت ہم لوگ میدان جنگ میں موجود تھے. تو آغا کہہ رہے کہ وہاں پر جو برادران موجود تھے میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ کا میدان جنگ میں حاضر ہونا، آپ کی ہر سانس تسبیح. اسلام کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں حاضر ہونا، آپ کی ہر سانس تسبیح. ماہ رمضان میں آپ روزے کی حالت میں اگر سو جائیں تو نومکم فیہ عبادہ، یعنی آپ کی نیند، آپ کا سو جانا بھی عبادت ہے. وعملکم فیہ مقبول، اور اس مہینے میں آپ کے تمام اعمال قبول شدہ ہیں، قبول ہو گئے آپ کے اعمال، یعنی قبول شدہ، مقبول یعنی قبول شدہ ہیں، یعنی قبولیت کی ضمانت دی جا چکی ہے کہ آپ کے تمام اعمال اس مہینے میں قبول ہیں. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک عمل صحیح طور پر قابل قبول انجام دیتے ہیں تو آپ کا عمل قبول شدہ ہے، ایک قبولیت کی ضمانت لی جا چکی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے یا دیگر عبادتیں ہم جو انجام دیتے ہیں، ان کی مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی گناہ انجام دیتے، جیسے ہی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا، کوئی گناہ ہم کر بیٹھتے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کی لذت ہم سے چھن جاتی. نماز کی جو لذت ہے، نماز سے جو لذت انسان کو آنا ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، روزے سے جو لذت انسان کو ملنا ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، انسان احساس نہیں کر سکتا اس لذت کا. لیکن ماہ رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ عمل اب آپ کا، آپ کے اعمال مقبول ہیں، قبول شدہ ہیں، روزہ آپ کا، آپ کا روزہ، آپ کی نماز اس مہینے میں قبول شدہ ہے. اور دعاؤکم فیہ مستجاب، اور آپ کی دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، مستجاب یعنی قبول کر لی گئی. انفاسکم تسبیح، آپ کی سانسیں تسبیح، تسبیح کے حکم میں. آپ نومکم عبادہ، آپ کی نیند، آپ کا سو جانا عبادت ہے. آپ کا عمل مقبول، آپ کا عمل اس میں قبول شدہ ہے، قبول درجہ قبولیت تک پہنچا ہوا ہے. اور دعا کو مستجاب، آپ کی دعائیں مستجاب قبول شدہ ہیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ क्या मांगा जाए वो भी बतलाया जा रहा है कि इस महीने में, और इस खुतबे में बतलाया जा रहा है कि अल्लाह से क्या मांगा जाए इस महीने में और किस तरह से मांगा जाए, क्या मांगा जाए किस तरह से, ये एक अहम बात है। हमको अपने मसाले और मफासिद का इल्म नहीं है, मसाले यानी वो चीज़ें जो हमारे हक में बेहतर है उसका इल्म हमको नहीं है बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें जो हमारे हक में बेहतर नहीं है उनका भी इल्म हमको नहीं है। तो ये हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता, तो फिर अल्लाह से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है तू हमको तौफीक दे के वो हम तुझसे मांगे, और जो हमारे हक में बेहतर नहीं है वो हम तुझसे ना मांगे, तू ही हमको ये तालीम दे दे के जो हमारे हक में बेहतर है वही हम तुझसे मांगे। तो कह रहे फसअलुल्लाह रब्बकुम मिन नियातिन सालिहा, अपने रब को पुकारो, अपने रब को अल्लाह को, अल्लाह को अपने रब को इस महीने में पुकारो किससे, सच्ची नीयत से, सिद्क़े नीयत से, नीयत में सदाकत हो, सच्चाई हो, यानी खालिस नीयत हो, नीयत खालिस से अल्लाह को पुकारो इस महीने में, यानी एक बार अगर हम इंसान या अल्लाह अगर वाकई नीयत सादिका से हम पुकारें, अल्लाह से मुतवस्सिल हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। एक वाकया यहाँ पर नकल करते हैं, अब ये वाकया बहुत सी मुश्किलें है हमारे लिए, बहुत से वाकयात में हमको जल्दी यकीन नहीं आता, क्यों यकीन नहीं आता, क्योंकि शायद हमारे अंदर ज़रफ़ियत नहीं है, हमारी ज़रफ़ियत में सी नहीं है, तो लिहाजा बहुत से वाकयात का ये वाकया सुन के इनकार कर देते, लेकिन चूँकि आयतुल्लाह अहमद ही मियाँ जी बयान करें तो मैं भी बयान कर देता हूँ। वो ये कि फरमा रहा है कि एक आरिफ से ये बात नकल हुई है कि चंद लोग मिल के हज करने के लिए या मक्के की ज्यारत हज या उमरा करने के लिए मक्के का सफ़र किए, तो वो लोग यानी उनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं था जाने का, शायद उस ज़माने में पासपोर्ट वीज़ा जो भी चीज़ ज़रूरी थी वो नहीं था उनके पास, तो वो लोग ऐसे ही चले गए यानी बगैर पासपोर्ट वीज़े के यानी बगैर जवाजात के वो लोग हुदूद में दाखिल हो गए मक्के। जैसे ही दाखिल हुए अलबत्ता वो लोग मेन अहम रास यानी जो शाहरा थी यानी जिसको मारूफ रास्ते जिसको कहते हैं मारूफ रास्ते यानी मक्का जाने का जो एक सब लोग जानते हैं ये रास्ता मक्का जाने वाला, वो रास्तों से वो लोग नहीं गैर मारूफ रास्तों से मक्का पहुँचे, तो अभी मक्का पहुँचे नहीं थे मक्के के बाहर ही थे कि उन लोगों को पुलिस वाले पकड़ लिए, पुलिस या फौज या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी आप समझ लीजिए उस मुल्क के पुलिस वाले या फौज वाले या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले बहरहाल सिक्योरिटी दस्तों के हाथों में ये लोग पकड़े गए, और वो लोग चाह रहे थे कि जो है कुछ पैसे दे, पैसे दो आप हम छोड़ देते, होता ना ऐसा आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर गैरकानूनी तरीके पर दाखिल हो गए तो उस मुल्क के पुलिस वाले बोलते कि मैं कुछ पैसे दे दीजिए हम आपको छोड़ देते, तो सबके पास पैसे थे उस आरिफ बुजुर्गवार के पास पैसे नहीं, पुलिस वाला उनसे मुतालबा करता था आप कुछ पैसे दो आपको छोड़ देते आपको जाने देंगे आप मक्का चले जाओ, सबके पास तो पैसे थे लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, और दूसरे लोग जिनके पास पैसे थे वो बोल रहे थे कि हम आपके पैसे दे देते दे। आपकी तरफ से पुलिस वालों को हम पैसे दे देते दे। आप चलिए बस, वो कह रहे थे नहीं मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगा, मैं खुदा की खातिर खुदा की मेहमानी पे आया हूँ, खुदा मेरा मेजबान है, खुदा अदा करना मेरे पैसे, आप लोग देने की जरूरत नहीं, आप मेरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं खुदा का मेहमान हूँ, खुदा की जिम्मेदारी है मेरे पैसे देना, खुदा को चाहूंगा बस वो ही देना मेरे पैसे। ये बात चली रही थी, देखे के जो है गर्दो गुबार हो रही, दूर से गर्दो गुबार हो रही, तो देखे तो दो लोग बड़े सवार आए, घुड़सवार आगे कहने लगे कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है तो ये समझ गए कि ये जो दो लोग आ रहे हैं ये मेरी मुश्किल हल करने के लिए आ रहे हैं, ये मेरे लिए आ रहे हैं। जब वो पहुंचे वहां पहुंच के उन्होंने कहा कि आप सवार हो जाइए, आप सवार हो जाइए हमारे साथ थोड़े, तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो जो घोड़सवार थे उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि शरीफ मक्का ने उनको बुलाया, शरीफ मक्का ने तुम्हें बुलाया है। तो कह रहे हैं कि इंसान अगर नीयत खालिस से सच्ची पाक नीयत के साथ अगर खुदा को पुकारे तो खुदा पहुंचता उसकी मदद के लिए, खुदा कबूल करता उसकी मदद। एक और वाक्य है यहाँ पे नकल करेंगे हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक बूढ़ा शख्स निकल रहा था ज़ईफ़ा, तो उसकी ज़बान में खुदा 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 यही बोल रहा था। तो एक शख्स बोला, भाई कितने बार बोलते आखिर, एक बार दो बार, खुदा खुदा खुदा। तो उन्हें उस वक्त तक बोल, यानी इतनी बार बोलू कि कोई एक बार सच्चे दिल से निकल जाए खुदा, दिल की गहराइयों से एक इतनी बार बोलू कि कम से कम एक बार में इतने इतनी बार दोहराऊ, कई बार तकरार करूं कि एक बार दिल से सही माना में निकल जाए खुदा, उस वक्त तक तकरार करता रहा खुदा। कह रहे हैं कि या का नाबूदू का या नस्तईन जो है ये बहुत बड़ा दावा है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद चाहते हैं, ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन दावा तो है, लेकिन ये ऐसी बात है कि हम लोग आज तक सच्चे दिल से ये बात नहीं कह सकते, सच्चे दिल से या का नाबूदू हम तेरी ही इबादत करते हैं, वैया का रसने हम खुद ही से मदद चाहते हैं, ये सच्चे दिल से एक बात भी नहीं कह सके हम। लेकिन कहना है, कहना चाहिए, इतना कहें अपनी उम्र में कि कम से कम एक बार सच्चे दिल से निकल जाए या का नाम बोलू वैया का रसने हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, एक बार सच्चे दिल से निकल जाए तो कह रहे हैं कबूल है, एक बार भी कबूल हो गया अगर सच्चे दिल से हम अगर या का नाबूदू व या का नस्तईन कह दें, एक बार भी अगर कबूल हो गया नियत सादिका के साथ के बेनियातिन सादिका उन पाक नियतों के साथ खुदा को पुकारो, व कुलूबिन ताहिरा, कुलूबिन ताहिरा पाकीज़ा दिलों के साथ खुदा को पुकारो, पाकीज़ा दिलों के साथ ये और मुश्किल काम है, नियत सादिक एक मुश्किल काम था, फिर कुलूब ताहिर कल्ब ताहिर और मुश्किल काम, उससे भी मुश्किल है, नियत सादिक से मुश्किल कल्ब ताहिर। क्यों? कल्ब ताहिर का मतलब क्या है? वो कल्ब जो हसद से पाक, हसद ना, वो कल्ब जो हुब्बे दुनिया से पाक, ताहिर वो कल्ब जो शोहरत तलबी से पाक हो, वो कल्ब जो मकाम हासिल करना, बड़े बड़े ओहदे हासिल करना, उस यानी उस जज्बे से पाक हो, वो कल जो रजायत से पाक हो, वो कल जो गरायज से पाक हो, गरायज हैवानी से और बुरे अफकार से पाक हो, ये तमाम चीज़ों से अगर पाक है तो वो कल कल्ब ताहिर है, कल्ब सलीम। एक मुस्तकिल किताब है आयतुल्लाह दस्तगर शिराजी की, पढ़ने से मुतालिक कल्ब सलीम जो है ना, जो गुनाह ने कबीरा जो किताब लिखी है आयतुल्लाह दस्तगर शिराजी, उसके साथ कल्ब सलीम की किताब लिखी, एक वाकया भी मशहूर है उनका इस हवाले से। एक मजलिस में वो मौजूद थे जहाँ पर उनको तकरीर करना था, तो निज़ामत वो शख्स कर रहा था, वो उनका तारुफ इस तरह से करवा, यानी उनको बुलाने के लिए कह रहा है कि अब मैं आपके सामने साहिब गुनाह ने कबीरा को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और आपसे किताब करें, साहिब गुनाह ने कबीरा किताब चूँकि उनकी गुनाह ने कबीरा थी, तो अब मैं आपके सामने साहिब गुनाह ने कबीरा को किताब करने के लिए पेश कर रहा हूँ। तो वो जैसे डाइस पे आए तो उन्होंने कहा कि शायद जो हमारे बराबर जो निज़ामत कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि मैं साहिब कल्ब सलीम भी हूँ, साहिब कल्ब सलीम, कल्ब सलीम उनकी दूसरी किताब, साहिब कल्ब सलीम भी हूँ। तो कल्ब सलीम आयतुल्लाह दस्तगर शिराज़ी की किताब पढ़ने से मुताल्लिक़ है, वाकई वो ज़बरदस्त किताब है। तो कह रहे हैं कि कुलूब यानी कल्ब को किन किन बीमार कल्ब को क्या क्या बीमारियां लाभ हो सकती है और किन किन बीमारियों से कल्ब को बचाने के बाद कल्ब कल्ब सलीम क्या करता है। सलीम यानी सालिम यानी बीमारियों से पाक। आप कैसे मैं सालिम हूँ, सालिम हूँ यानी मैं मुझे कोई बीमारी नहीं, ना मुझे बुखार है, ना मुझे जुकाम है, ना मुझे टीबी है, ना मुझे कैंसर है, मैं सालिम हूँ। सालिम हूँ यानी सलामत, सालिम यानी अमान में, इससे अमान में हूँ, बीमारियों से अमान में। कल्ब सलीम यानी बीमारियों से पाक दिल, बीमारियों से अमान में जो दिल है उसको बोलते कल्ब सलीम। पाक दिल यानी ना हसद है उसमें, ना बोझ है उसमें, ना कीना है उसमें, और ना शोहरत तलबी है उसमें, और ना बड़े बड़े मकाम हासिल करने की तलब है उसके अंदर, बुरी फिक्रें नहीं है उसके अंदर, बुरे गंदे अफकार नहीं है, गंदे अगराज नहीं है, उसको कहते हैं कल्ब सलीम। हाँ, ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह अहमदी मियां जी फरमा रहे थे, क्योंकि शायद जवान काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे वहाँ पे, तो जवानों से खिताब करके फरमा रहे थे, तुम सब जवान हो, तुम में से शायद बहुत से लोग शाह का ज़माना ना देखे हो, इंकलाब इस्लामी से पहले रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी ईरान में, तो तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रज़ा शाह पहलवी का ज़माना दर्ज ना किए हो। तो कह रहे हैं कि उस ज़माने में अगर कोई औरत बदहिजाब या बेहिजाब नज़र आती तो उसे कहते खानम पर्दा करो, सही से पर्दा करो, तो कहती थी दिल पाक रहे तो काफ़ी, दिल पाक रहना मौलाना ये क्या बातें हैं आपकी, इंसान का दिल पाक रहना, ये आज यहाँ पे भी कहते हैं बस लोग, अरे भाई नमाज पढ़ो, दिल पाक रहना भाई, दिल पाक रखो सब सही रहता, यानी ना नमाज पढ़ेंगे ना रोज़ा रखेंगे, बस दिल पाक रखो, ना हिजाब करेंगे, यानी हिजाब का ताल्लुक बोलो कि उनका कहना ये है कि हिजाब तो ज़ाहिरी है, हमारा दिल पाक है, तो दिल पाक है अगर बाल खुले हुए हैं तो क्या हुआ, दिल तो हमारा पाक है ना, बाल अगर नजर आ रहे हैं जिसमें हमारा नजर आ रहा तो क्या मुश्किल है, दिल हमारा पाक है, नीयत हमारी पूरी नहीं है। जैसा आज भी अपने मोहल्लों में ये बात होती कि एक पड़ोस का बच्चा अगर घर में आया तो औरतें हिजाब नहीं पहनती हैं, अपने मोहल्ले का बच्चा है आ गया तो क्या होगा, मोहल्ले का बच्चा है, अगर हम उनको वहाँ पे शरी हुक्म बतलाने लगे, नहीं नहीं बच्चा मोहल्ले का ज़रूर है लेकिन महरम नहीं है आपका, आपको हिजाब करना ज़रूरी है, महरम नहीं है ना भाई आपका, तो कहते हैं इस असल में इसकी नीयत ख़राब है, हमारा तो दिल पाक है, ये जो शरी हुक्म बतला रहा है इसकी नीयत ख़राब है, असल में हमारा तो दिल पाक है, हम कभी नहीं समझे बच्चे को अपना बच्चा ही समझे, पड़ोस के बच्चे को भी अपना बच्चा भाई समझे, इसकी नीयत खराब है जो ये कह रहा है कि तो हिजाब करो ओढ़ कपट के रहो, जबकि ये बात सही है उनका दिल पाक है, लेकिन दिल पाक होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाए, खुदा के हुक्म को अहमियत न दी जाए, ऐसा नहीं है, दिल आपका पाक जरूर है लेकिन जो खुदा का हुक्म है वो भी बजा रही है, नूर लाना नूर, पाकिजगी के साथ पाकिजगी के ऊपर पाकिजगी, बस ऐसे सादा लोग इंसान है, यानी कपट नहीं है उनके पास, तो कपट के साथ बोलते दिल में बदमाशी है बोलते दिल पाक होना भाई बोलो, लेकिन बस लोग वाकई उनका दिल पाक रहता लेकिन फिर भी शरई हुक्म पर अमल नहीं करते। अलबत्ता इनसे शरई हुक्म पर अमल करवाना आसान है, जिनके दिल पाक है वाकई तौर पर, उनको अगर समझा दिया जाए नहीं ये मुँह बोला जो आपका पड़ोसी है, मुँह बोला भाई बोलते ना पड़ोसी को, इससे पर्दा करना वाजिब है, चाहे ठीक है कोई भी होने दो, महरम नहीं है आपका, आपको पर्दा करना वाजिब। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई पाक नीयतों से, सच्ची नीयत से और पाक दिल से क्या मांगे, क्या चाहें खुदा से, कह रहे हैं कि एक तो सच्ची बात कहें, यानी जो दिल में दिल की गहराई में जो सच्ची बात है वो कहें कि क्या मांगा जाए, युवफ़िकुकुम लिसियामिही व तिलावते किताबिही, कि खुदा हमें कामयाब करे, तौफीक दे, किस बात, किस बात की तौफीक दे, लिसियामिही कि हम रोज़े रख सकें, व तिलावते किताबिही और उसकी किताब की तिलावत कर सके। कह रहे कि रिवायतों में ये बात आई है, रिवायतों में ये बात आई है कि बास लोगों का रोजा जो है वो फकर भूख प्यास है और भूख प्यास से ज्यादा नहीं है। हाँ कह रहे एक अच्छी मिसाल दी, कह रहे हैं कि भूख प्यास का मतलब यह है कि पुराने जमाने में धान यानी वो चावल जो जिसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ था, छिलका चढ़े हुए को धान बोलते, छिलका जब उतर जाता उसके ऊपर से जो भूसा बन जाता तो फिर वो चावल कहलाता, चावल से पहले जो छिलका चढ़ा हुआ रहता उसको धान बोलते। धान से चावल अलग करने के लिए पुराने जमाने में ये करते थे कि बैलों को यानी वो चावल को एक जगह रख के बैलों को उसके ऊपर से गोल गोल फिराते थे, फिराने के नतीजे में ये होता था कि चावल अलग धान अलग भूसा अलग। तो बैलों के मुंह में क्या करते थे, छन्नी टाइप रस्सी से बुनी हुई एक छन्नी रहती थी, आप भी देखे होंगे कभी, वो छन्नी उसके मुंह को बांध देते थे बैल के ताकि यही चावल खाना ना शुरू कर दो, वो बना रहे उसके मुंह पे, वो मुंह पे बना रहे ताकि झुक के ये खान के चावल ना खा जाए बैल। उसको कोलू का बैल बोलते थे, कोलू के बैल का काम क्या, खाली करना बोल ताकि वो चावल खान से अलग हो, चावल भूसा अलग चावल अलग। तो कह रहे कि हमारा रोजा भी ऐसी है जो बैल के मुंह में जो छन्नी जो रस्सी बंधी गई है, हमारा रोजा भी बस इसी हद तक है कि बस मुंह को बंद किए हुए और कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ मुंह बंद है, आंखें आजाद, हाथ आजाद, कान आजाद, नाक आजाद, जबान आजाद, सिर्फ मुंह बंद है वो भी खाने से बंद है, जबान जीवन से बंद नहीं है, जबान चुगली से बंद नहीं है, कान जीवक सुनने से बंद नहीं है, कान गाने सुनने से बंद नहीं है, कान हराम म्यूजिक सुनने से बंद नहीं है, आंखें हराम चीजें देखने से बंद नहीं है। रोजा यानी तमाम आजा का रोजा यानी पूरे जिस्म का रोजा, हम सिर्फ मुंह बंद किए हुए वो भी सिर्फ खाने पीने से, जैसा वो बैल के मुंह में वो छन्नी लगा दिए आप, वो रस्सी बंद दिए कि बैल वो चावल ना खा जाए, उसी तरह हमारा मुंह बंद हो गया बस खाने पीने से, लेकिन सब चल रहा, टीवी पे बुरी चीजें भी देख रहे हैं, हराम म्यूजिक भी सब चल रहा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप वही वाकया नकल फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा का गुजर एक बस्ती से हो रहा था या किसी मोहल्ले से हो रहा था, तो वहां पे एक औरत अपनी कनीज को बुरा भला कह रही थी, अपनी खालिमा को बुरा भला कह रही थी, नौकरानी गालियां दे रही थी, बुरा भला और गालियां दे रही थी। तो रसूल खुदा उसको बुला के खजूर पेश किए, तो उसने कहा मैं रोजे से हूँ, आप मुझे खजूर पेश कर रहे हैं, मैं रोजे से हूँ। तो रसूल खुदा ने फरमाया इसीलिए तो मैं खजूर पेश कर रहा हूँ कि तू इफ्तार कर ले, क्योंकि बुरा गालियां देने के बाद भी तेरा रोजा कैसे बाकी है, इसे बेहतर है कि तू इफ्तार कर ले। कह रहे हैं कि ये महीना जो है ये महीना तमरीन का महीना, तमरीन यानी मश्क यानी एक काम को इतना दोहराना कि वो काम इंसान के लिए आसान हो जाए, इब्तिदा में हर काम मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिस का इब्तिदा में हर काम मुश्किल हो जाता है, किसकी तमरीन करना है, किस चीज की प्रैक्टिस करना है, गुनाहों को छोड़ने की प्रैक्टिस करना है एक महीने तक, उसके बाद गुनाह को तर्क करने की लज्जत इंसान को मिलती है, लज्जत करके गुनाह को तर्क करने की लज्जत इंसान को हासिल होती है। कह रहे कि वो लोग जो सलाम अलैकुम, कह रहे कि वो लोग जो बार बार सिगरेट पीते हैं, भाई कौन सी ताकत है जो 16 रोजे की हालत में कि आप सिगार या कोई सिगरेट ना पिए, ये कौन सी चीज है? ये है वही ईमान, ईमान की ताकत। ईमान की ताकत है कि आप आम हालत में जब रोजे से ना हो तो सिगरेट से नहीं बचते आप, सिगरेट होना तलब होती सिगरेट की। लेकिन ये कौन सी ताकत है कि रोजे में आपको सिगरेट पीने से रोकी गई? ईमान की ताकत। अब अगर कोई शख्स हमेशा के लिए सिगरेट को छोड़ना चाहता है तो उसके अब वो छोड़ना उसका उसके इरादे से मुताल्लिक है, यानी इरादा करे वो, अपने इरादे को मजबूत बनाए और फिर खुदा से ये चाहे, खुदा से दुआ करे कि खुदावंद आकर इस बुरी आदत को छोड़ने में उसकी मदद करे और फिर उसके रोजे को हजूर की वाकई रोजा खुदावंद आलम बना दें, ना ये कि फकत ना खाएं और ना पिए, और बल्कि हमारी आंखें भी रोजे से हों, हमारे हाथ भी रोजे से हों, हमारे कान भी रोजे से हों और तवज्जो रहे कि इंसान हर चीज ना सुने, हर चीज ना देखे। देखिए एक वाक्य नकल कर रहे हैं, ये वाक्य पे मैं तमाम कर देता हूँ और आज खुद मेरे साथ जो एक वाक्य पेश आया वो नकल करके गुफ्तगू को तमाम। कह रहे हैं कि एक शख्स की किताब आयतुल्लाह हमदी बयान जी के पास थी, आपने किसी शख्स को मुताले के लिए दी तो वो शख्स क्या किया, उस किताब को किताब का मुताला बारिश में किया जिसकी वजह से बारिश के खतरे किताब पर गिरे, बारिश के खतरे किताब पर गिरे। फिर जब ये वापस लौटाया और आपने जब उस जिसकी किताब थी उसको लौटाना चाहा तो किताब देखे बोला ये क्या मुसलमानी है, आपकी पूरी किताब मेरी गंदी कर डाले, पूरे पानी के छींटे इसमें पड़े हुए, पानी के धब्बे लगे हुए हैं, पानी के धब्बे इस किताब पे लगे हुए हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप रोजे से हैं लेकिन आप ख्याल नहीं लोगों का, यानी रोजा सिर्फ आप खाने पीने से रुके हुए हैं। वहिला जो पुरानी आपकी रविश थी, पुरानी जो आपकी रफ्तार बेढंगी थी वही जा रही है सारी। आज मंडी जाने का इत्तेफाक हुआ तो गुजर रहा था तो हरी मिर्च 10 रुपए किलो पुकार रहा था, हरी मिर्च 10 रुपए किलो हरी मिर्च, तो मैं बोला बहुत सस्ती दे रहा, जाके और भी दुकानों पे देख लूँ वाकई यही सस्ती दे रहा है या आगे भी सस्ती है, इससे अच्छी सस्ती मिल जाए। तो दुकानों में पूछा तो एक जगह 20 बोला, एक जगह 16, एक जगह 14, क्वालिटी में उससे अच्छी थी जो 10 रुपए पुकार रहा था। तो मैं बोला थोड़ी क्वालिटी गिरी है लेकिन 10 रुपए बुरे नहीं है, 10 रुपए में ले लेंगे 14 रुपए के बजाय। वापस आके बोला कि आधा किलो दो, तो बोला आधा किलो यहाँ की 1 किलो लेना होगा, अरे बोला आधा किलो दे दो, ठीक है 10 रुपए लेके आधा किलो बोला। तो मैं बोला 10 रुपए में आधा किलो, तो नहीं 16 रुपए में किलो है, 8 रुपए में आधा किलो है, 10 रुपए की 10 रुपए आप जो दे दो थोड़ी और पढ़ के डाल दो। मैं बोला अभी तो तुम 10 रुपए किलो पुकार रहे थे, फिर अब ये 16 रुपए कैसा, मैं 10 रुपए किलो है बनके आया यहाँ भाई, तो 14 रुपए में तो वहाँ पे भी तुम इससे बेहतर। तो नहीं आपको गलत फहमी हुई कि मैं तो 10 रुपए रहूँगा, 10 रुपए 8 रुपए में आधा किलो आती है, 16 रुपए किलो। अरे मैं बोला कह के मुसलमान है यहाँ, कह के मुसलमान है तुम, तो वहाँ एक हिंदू और बेटी भी थी वो बोली नहीं नहीं बराबर ये 16 रुपए बोला वो अच्छा बोला, भला मेरे सुनने में गलती हुई क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन 16 रुपए में 14 रुपए से 14 रुपए में जो हरी मिर्च मिल रही थी बेहतर क्वालिटी, 16 रुपए में उससे बेहतर क्वालिटी नहीं मिली। अच्छा ये कह रहा कब 16 रुपए में है, कब कह रहा जब मेरी थैली में डाल दिया हरी मिर्च। अब हरी मिर्च निकालना भी आसान काम नहीं है कि मैं उसको निकाल के वापस कर दूँ एक एक जमा करके, रोज है ना, फिर देखे तो मुसलमान है, दाढ़ी वाड़ी छोड़ा हुआ है। अब लगे तो हम बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? बोला खुल के बोलो क्या बेईमानी कर रहे हैं तुम? अभी इससे ज्यादा बेईमानी क्या है? 16 रुपए 10 रुपए बोल के 16 रुपए में दे रहे हैं। बल इंसान यानी कोई मुसलमान यानी रोजा रख लेना आसान है भूख प्यास का, यानी सिर्फ भूख से बचे हुए प्यास से बचे हुए, लेकिन ना आंखें बच रही ना तोल मंडी में चले जाइए। अक्सर मुसलमान तोल में कमी कर दो पहले से चले गए, अक्सर यह तुला लीजिए आप 1 किलो खरीदिए घर लाके सही वेट मशीन पे अगर आप तोलेंगे तो आपको 200 ग्राम 100 ग्राम की तो कमी आसानी से नजर आए। तो ये रोजा रखने के बाद भी मुसलमानों में ये चीज ना पैदा हो, उनके मामला ठीक ना हो और वही रफ्तारें बेढंगी, आंखों से जो चाहे वो देख ले रहे, कानों से जो चाहे वो सुन ले रहे, जबान से जो चाहे वो बक दे रहे, जाली सिवा तो बात नहीं करते मंडी में मुसलमान। तो बहरा रोजा रखे तो पूरे जिस्म के आजा, हाथ पैर रोजा, आंखें रोजा, नाक रोजा, मुंह रोजा, जबान रोजा, कान रोजा, फिक्र रोजा। इसीलिए रोजे को तकसीम किया गया, शायद आगे बयान भी करेंगे, रोजे अवाम रोजे खवास रोजे खासो खवास। रोजे की ये मदारिज है मर्तबे हैं, आम रोजा आम लोगों का रोजा, खास लोगों का रोजा खासो खास लोगों का रोजा। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد